हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अनय की ऐसी ताने भरी बात सुनकर मनस्वी को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर वो समझ गई कि शादी के इतने दिनों तक उसने भी अनय को नज़रअंदाज किया, दुख पहुँचाया और शायद चिढ़ाया भी है। ऐसे में वो कैसे एकदम से उसकी बात मानेगा और जैसा वो चाहती है वैसा सोचेगा। ये बात समझ आते ही मनस्वी ने गहरी सांस ली और अपनी माँ की समझाई हुई बातें याद करने लगी। वैसे कहीं न कहीं वो भी यही चाहती थी और इसीलिए तो इतने दिनों से ये सब नाटक कर रही थी, लेकिन असल में उसने वो सब सच में किया था। अनय के साथ एक कमरे में रहना, उससे सामान्य रहकर बात करना और अपनी माँ के सामने उससे उसका हालचाल, काम और खाने पीने के बारे में पूछना, ये सब करते हुए उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस बीच अनय भी उसे इसी तरह का व्यवहार कर रहा था। इन 15 दिनों में उन दोनों को एक दूसरे की काफी आदत पड़ गई थी। मनस्वी ने तो इसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन अनय इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मनस्वी ने बहुत ही आराम से कहा, हाँ ठीक है, आज तक नहीं पूछा, लेकिन आज पूछ रही हूँ तो आज ही बता दो ना। वैसे नहीं बताना तो भी कोई बात नहीं है, चलो डिनर नहीं किया होगा ना तुमने, साथ में डिनर करते हैं। अनय ने उसकी मीठी बातें सुनकर उसे याद दिलाते हुए ताना मारते हुए कहा, मनस्वी तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारी मम्मी अभी घर में नहीं है, वो सुबह ही तुम्हारे भाई के साथ अपने शहर वापस चली गई है, इसलिए तुम्हें अब ये सब नाटक जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम अपने रूम में भी वापस जा सकती हो। और रही बात खाना खाने की, तो मेरा मन नहीं है, तुम जाकर खा लो, वैसे भी मुझे अकेले ही खाने की आदत है। अनय की बातें सुनकर मनस्वी को समझ आ रहा था कि वो उसे ताना मार रहा है, इसलिए मनस्वी ने भी उसे याद दिलाते हुए कहा, अच्छा पिछले 15 दिनों से तो हम तीनों साथ ही खाना खाते थे और नाश्ता तो मम्मी के साथ करते थे, तो फिर ये अकेले खाने की आदत उससे पहले थी ना तुम्हें, अब तो तुम्हारी आदत बदल रही है, और अपने कमरे में क्यों जाऊं मैं, ये भी तो मेरा कमरा है, मतलब जब पूरा घर ही मेरा है तो। अनय को उसकी ये बात बुरी लगी, उसने मनस्वी की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और कहा, हाँ पता है मुझे तुम्हारा घर है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी पूरा घर ही तुम्हारा है ना, तो फिर कहीं भी जाकर रहो, और ये एक कमरा तो छोड़ दो मेरे लिए, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो फिर मैं ही किसी और रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ, या फिर उससे भी प्रॉब्लम है तो कहो यहाँ से ही चला जाऊँ। अनय अपनी बात पूरी करने से पहले ही मनस्वी आगे आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। थोड़े भावुक होती हुई उसने नहीं में सिर हिलाकर कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, डोंट यू डेयर थिंक अबाउट इट, और ऐसे कैसे चले जाओगे मुझे छोड़कर इतनी आसानी से, मैं तो कहीं भी नहीं जाने दूंगी तुम्हें, और क्या प्रॉब्लम है, तो मैं अब इस रूम में मेरे साथ ही रहने में, अभी तक तो रहते थे। उसे इस तरह देखकर अनय को थोड़ा अजीब लगा, उसने अपने मुंह पर से उसका हाथ हटाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, क्यों अभी तुमने ही तो कहा तुम्हारा घर है, तो फिर तुम रहो ना आराम से, वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ एक ही रूम में रहकर अपना दिमाग खराब करने का, पता नहीं क्या क्या बोलती हो और सुबह भी क्या बोल रही थी, लेकिन अभी आ गई ना अपनी असलियत पर, याद दिला दिया मुझे कि मैं तुम्हारे एहसानों तले दबा हुआ हूँ। मनस्वी थोड़ा सा आगे आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल देती हूँ, तुम तो जानते हो ना मुझे, इतने दिनों से तो साथ हो। लेकिन अनय ने उसे अपना हाथ नहीं पकड़ने दिया, दो कदम पीछे हटते हुए उसने सामने की तरफ हाथ दिखाकर उसे उसकी जगह पर ही रोक दिया। अनय एकदम सीरियस होते हुए बोला, साथ नहीं, सिर्फ एक घर में रहते थे हम अब तक, वो भी अलग अलग कमरों में, और तुम्हें याद है पता नहीं कितने दिनों तक तो हमारी बात भी नहीं होती थी, और तब तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा तुमने, पता नहीं आज अचानक से तुम्हें क्या सूझा जो तुम सुबह से ही ऐसी अजीब अजीब बातें कर रही हो। मनस्वी बहुत ही बेबसी से बोली, हाँ तो बेवकूफ थी मैं जो मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन यकीन मानो अनय, वो सब भी मैं कोई जानबूझकर नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों बस तब किसी पर भरोसा करने का मन नहीं था मेरा, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ रहकर मैंने जिस तरह से तुम्हें जाना और समझा है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे हमारे इस रिश्ते को एक मौका, अनय अब उसकी बातों से चिढ़ गया और थोड़ा सा चिल्ला कर बोला, एक मौका, पता नहीं क्या लगा रखा है तुमने, और कोई रिश्ता ही है नहीं हमारे बीच, तो फिर मौका किस बात का, ये सिर्फ एक डील थी हमारी शादी, याद नहीं है क्या तुम्हें? इसके बदली में तुमने मेरी कंपनी को डूबने से बचाया था, और हम दोनों के पापा ये चाहते थे, और वो दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो फिर किस बात की ये शादी और कौन सा रिश्ता? अनय की ऐसी कठोर बातें सुनकर मनस्वी की आंखों में आंसू आ गए। वो एकदम भावुक होती हुई बोली, अनय प्लीज डोंट से दिस, मैं बेवकूफ थी, मैं मानती हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और हर तरह से शायद तुम्हारा दिल भी दुखाया है, लेकिन मैं अपनी हर गलती मानने और सुधारने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा जो कुछ भी तुम कहो मैं वो भी मान सकती हूँ, लेकिन प्लीज कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना, और ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, शादी हुई है हमारी, हस्बैंड वाइफ है हम, जस्ट रिमेम्बर दिस ऑलवेज। अनय बिफरते हुए बोला, और क्या करूँ याद रखकर, हमेशा ही तुम्हारी बातें सुनता रहूँ और तुम्हारी मनमानी सहता रहूँ, जब तुम जो चाहो जैसा चाहो वैसा करती रहो, मेरी अपनी कोई लाइफ, कोई मर्जी, कोई ख्वाहिश है कुछ नहीं हो सकती है क्या? और वैसे भी मैं किसी और। अनय अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही बीच में बोल पड़ी, अनय प्लीज डोंट से दैट, मैं ये नहीं सुन पाऊंगी कि तुम किसी और से प्यार करते हो। अनय बिल्कुल कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या? असल में वो कुछ और ही कहना चाहता था, लेकिन मनस्वी ने उसे उसकी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। वो कहना चाहता था कि वो अब किसी और के साथ काम करने वाला है, और आदित्य ने ही उसे ऑफर दिया था, इसलिए अब वो मनस्वी के एहसान तले दबकर नहीं रहना चाहता था। लेकिन जब उसने मनस्वी की ऐसी हालत देखी तो वो सब कुछ समझ गया, और उसने मनस्वी के थोड़े मजे लेने की सोची। अनय ने उसकी आंखों में झांक कर देखने की कोशिश करते हुए पूछा, क्यों नहीं कर सकता मैं किसी और से प्यार? क्या उसके लिए भी मुझे तुमसे परमिशन लेनी होगी? मनस्वी उससे अपनी नजरें चुराती हुई बोली, इसका मतलब तुम सीरियस हो इस बात को लेकर? तुम मजाक नहीं कर रहे, तुम सच में किसी और से प्यार? अनय तुम लीगली मेरे हस्बैंड हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? ये सारे सवाल करते हुए मनस्वी आगे आई और उसने अनय की शर्ट के कॉलर के नीचे से अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसके ऐसे करते हुए सवाल पूछने पर अनय ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख लिया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कौन सा धोखा? किस धोखे की बात कर रही हो तुम? और जब हमारे बीच ऐसा कुछ था ही नहीं, कौन सा तुम मुझे पसंद करती हो या फिर मैं तुम्हें? तो फिर प्यार तो दूर की बात है, और पति पत्नी का रिश्ता भी कभी नहीं रहा हमारे बीच, तो फिर ये धोखा कैसे हुआ? मनस्वी ने बहुत ही उम्मीदों के साथ ये सवाल किया, नहीं वो सब जो भी हो और मैंने कभी तुम पर कोई हक नहीं जताया, तो क्या तुम मेरा ये हक किसी और को दे दोगे?
अनय ने एकदम सीरियस चेहरा बनाकर कहा, हाँ बिल्कुल, अब अगर कोई तुमसे बेहतर मिल रहा है मुझे, एक्चुअली तुम्हारे साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका, क्योंकि वो तुम्हारी तरह रूड, घमंडी और सेल्फिश नहीं है, इसलिए प्लीज बस करो ये सब बेकार की बातें, और अगर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहता तो मैं ही जाकर गेस्ट रूम में सो जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी बात खत्म करके अनय ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की, क्योंकि ये सब कुछ वो बस ऐसे ही बोल रहा था। असल में उसकी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं थी, लेकिन मनस्वी के चेहरे पर 12 बज चुके थे ये सब सुनकर, और उसका चेहरा देखने लायक था, जिसे देखकर अनय को मन ही मन उसकी हालत पर हंसी आ रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से किसी तरह उसने अभी भी अपना चेहरा सीरियस बनाकर रखा और उसे अपने सामने से हटाकर कमरे से बाहर निकल गया। पीछे वहां पर खड़ी मनस्वी अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोती हुई इस बारे में सोचने लगी। उसने अपने आप से कहा, मैंने शायद बहुत देर कर दी ये सब कुछ समझने में, और अब मेरे पास कोई भी मौका नहीं है, और शायद मैंने उसे खो दिया, क्योंकि वो अब किसी और से प्यार करता है, तो मैं उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती और ना ही उसे बांध कर अपने साथ रख सकती हूँ, इसलिए मुझे उसकी खुशी में ही खुश रहना चाहिए। हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। अपने आप से बातें करते हुए मनस्वी ने ये सब कहा, फिर अपने आंसू पोंछते हुए उसने हाँ में सिर हिलाया और खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हुए सीरियस फेस बनाकर वहां पर बैठ गई, लेकिन असल में उसका अभी भी बहुत ही तेज रोने का मन कर रहा था। अनय ने कमरे के बाहर दरवाजे के पास से झांक कर उसकी ऐसी हालत देखी तो उसे उस पर थोड़ा तरस आया, लेकिन फिर भी उसने इतनी जल्दी उसकी गलतफहमी दूर नहीं की। मुस्कुराते हुए वो वहां से गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ अक्षत और नैना श्वेता की पार्टी में पहुंच गए थे। अंदर आते ही श्वेता अक्षत को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अक्षत ने नैना की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब कर लिया और श्वेता की तरफ देखकर बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है श्वेता, क्योंकि मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड है, माय गर्लफ्रेंड, माय अक्षत उसका असली नाम लेने वाला था, उससे पहले ही नैना ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अलीशा, अलीशा राय, और इससे पहले हम रितेश सर की पार्टी में भी मिल चुके हैं, याद होगा तुम्हें? उसने अपना भी परिचय दिया। इस बात पर हैरानी से अक्षत उसकी तरफ देखने लगा। उसे ये बात याद भी नहीं थी कि वो पहले नैना का नाम बदलकर अलीशा रख चुका है और उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में सब उसे इसी नाम से जानते हैं। श्वेता ने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ याद तो है, उस दिन भी कोई लड़की तो थी अक्षत के साथ, लेकिन वो तुम ही थी ये तो दिखा नहीं था ना, क्योंकि वो एक मास्क पार्टी थी। उसकी बात पर नैना हल्का सा मुस्कुराई। फिर वो सब पार्टी के अंदर आ गए। वहाँ पर नैना और अक्षत दोनों को ही कई जाने पहचाने चेहरे नजर आ रहे थे। वहाँ पर कोई बहुत बड़ा स्टार या सेलिब्रिटी तो नहीं था, लेकिन कई छोटे मोटे सेलिब्रिटी और जूनियर आर्टिस्ट थे। लेकिन नैना की नज़र एक आदमी पर गई, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छे से पहचानती थी, क्रमशः।